ओम शांति। तो योग का जो अभ्यास अभी अभी हमने किया उसकी ओर एक नजर फिर डालते हैं। इस जीवन में कई सारी आत्माओं से हमारा संपर्क होते रहता है और उनके विषय में हमारे चित्त पर बहुत सारी चीजें छप जाती है। ऐसी संसार में बहुत सी आत्माएं हैं कि जिनको द्वापर से लेकर अब तक हमने बहुत दुख दिया है। कभी हम राजा थे, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया और वहां की प्रजा सारी नष्ट हो गई, कौन जिम्मेवार? कभी साहूकार थे, किसी की जमीन हड़प ली, शायद किसी की मृत्यु भी हमारी वजह से हुई हो किसी जन्म में, और जन जन के हिसाब किताब कहां चुक्त हो रहे अभी? और ब्राह्मणों के सबसे अधिक हिसाब किताब किसके साथ है? किसके साथ? ब्राह्मणों के साथ। तो ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुक्त होंगे। ये ब्राह्मण परिवार एक एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर, सही है? जिस जिस घर में जन्म लिया है वहां क्यों लिया था? क्योंकि हिसाब था। जो बच्चा बनकर घर में आया है, क्यों आया है तुम्हारे घर में? माताओं, क्या लेकर आया है? तलवार लेकर आया है, और हम उसे ब्रह्मा कुमार बनाना चाहते हैं। वो आया अपने काम से, जन जन्म के हिसाब किताब अब पूरे होने हैं। इसलिए योग में एक अभ्यास हमें रोज करना है। कितनी आत्माओं को दुख दिया, कितनों को पीड़ा पहुंचाई, कितने षड्यंत्र किए पता नहीं, कितनों को फंसाया, कितनों को धोखा दिया, कितनों को अपमान किया, कितनों की निंदा की, ग्लानी की, परचिंतन किया, अफवाहें फैलाई। बाकी जन्म तो छोड़ो, इस जन्म में, इस जन्म के वो पुराने जन्म को भी छोड़ो, ब्राह्मण बनने के बाद के जीवन में भी कार्य किया और कईयों का अभी जारी है। किस किस का जारी है ये कार्य? वो हाथ खड़े करो। दूसरों को दुख देने का कार्य, जिनको चैन नहीं आता है, सुख नहीं मिलता जब तक किसी को कुछ कहना दे, व्यंगबान, अपवचन, कुवचन, कटु वचन, कई जन्मों से हम यही करते आए हैं और इस जन्म में भी किया था और शायद अब भी कोई कोई कर रहे हैं। माताएं बाबा से कहती है, बाबा हमारा पति बहुत तंग करता है, उसको ज्ञान में लाओ। तो बाबा का क्या उत्तर है? तुमने भी किया होगा, तुमने भी सताया होगा, तब तो सता रहा है। जन जन के हिसाब किताब अभी चुक्त होने हैं, इसलिए नए हिसाब नहीं बनाने हैं अब। पहले ही बहुत बंधन है, फ्रेश बॉन्डेजेस निर्माण नहीं करना है, नए और ज्यादा घनिष्ठ बॉन्डेजेस निर्माण नहीं करना है। जो है उतने ही काफी है। इसके लिए यदि हमारे पीछे बहुत सारी आत्माओं की बद्दुआएं हैं और हम पुरुषार्थ में सब कुछ कर रहे परंतु फिर भी उन्नति नहीं होगी, उन आत्माओं से हमें क्या मिलाना पड़ेगा? दुआएं। इसके लिए अभी जो प्रयोग किया योग का, उन सभी आत्माओं को आंखों के सामने इमर्ज करो जिनको हमने दुख दिया, पीड़ा पहुंचाई, शायद उनकी मृत्यु हमारी वजह से हुई, तड़प तड़प के वो मरे, उन सभी आत्माओं को आंखों के सामने देखो कि जो बदले की भावना रखते हैं अब हमारे लिए, क्योंकि हमने किया ही उनके साथ ऐसा था, फंसाया उन्हें, धोखा दिया, ऐसे ऐसे शब्द कहे उनके बारे में जिससे उनकी हृदय जैसे वेदना पहुंच गई उस हृदय को। अब क्या करना है हमें उन आत्माओं के साथ? अमृत वेला उनसे माफी मांगनी है। कितना दिन माफी मांगेंगे? कितना दिन? कितना दिन का प्रोग्राम है ये? जब तक वो माफ न कर दे, और वो माफ कर दे इसका प्रमाण क्या है? कब हम समझे कि उनसे माफी मिल गई है? अंदर से अंदर की खुशी होने लगेगी, तब समझ लेना कि उन्होंने हमें माफ कर दिया। हमारे साथ आत्माओं की बद्दुआएं चल रही है, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं। कोई कुछ करना चाहता था, हम बाधा बने, हम विघ्न बने उनकी आध्यात्मिक उन्नति में। हम ज्ञान में नहीं थे, कोई दूसरा ज्ञान में था, उसके मार्ग में उस अज्ञान काल में हमने बाधा डाली थी। फिर हम भी ज्ञान में आ गए, परंतु वो कर्म तो था। तो क्या करना है? आत्माओं से रोज माफी मांगनी है। और क्या करना है? अनुभव करना है कि उन्होंने हमें माफ कर दिया। और एक दिन ऐसा आएगा, अचानक से हल्कापन महसूस होगा, तब समझ लेना कि माफी हो गई। रोज ये प्रयोग करना है, क्योंकि जब तक आत्माओं से दुआएं हमें प्राप्त नहीं हो जाती, उनसे आशीर्वाद नहीं मिल जाता, आगे नहीं बढ़ सकते। उनकी बद्दुआओं ने रोक के रखा है, और हमारा अहंकार उनके सामने झुकने को राजी नहीं है। हम क्यों माने कि हमने कुछ गलत किया था? तो जब बोल के हम ये नहीं कर सकते, तो मनसा से तो जरूर कर सकते हैं। चलो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके सामने जाकर उससे माफी मांगो, वो नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं मनसा से, संकल्प से, और उस आत्मा को रोज पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना है। अहंकार मनुष्य को झुकने नहीं देता, वो कहता है मैं क्यों जाऊं, उसे आना चाहिए, हम बड़े हैं उम्र में, अनुभव में, और गलती तो मेरी है ही नहीं, गलती उसकी है। अहंकार झुकता नहीं, अकड़ कर खड़ा रहता है, और अध्यात्म अर्थात इस अकड़ को ही समाप्त करना, निरंकारी। तो आत्माओं से क्या करना है? रोज माफी मांगनी है, अनुभव करना है कि उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और माफ कर दिया, और वो भी बहुत खुश हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया है। यह अभ्यास रोज। दूसरा अभ्यास और एक करना है जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सा? जो अभी अभी हमने किया योग में, उन सभी आत्माओं को देखना है जिन्होंने हमें क्या किया है? बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। और क्या किया है उन्होंने हमारे साथ? क्या किया है उन्होंने हमारे साथ? अपमानित किया है, धोखा दिया है, षड्यंत्र रचे हैं, असहयोग दिया। जब हमें बहुत ज्यादा सहयोग की आवश्यकता थी, हम उनके पास गए और उन्होंने मुंह फेर लिया। उन पर हमें बहुत विश्वास था और उसी समय मदद नहीं की। ऐसी आत्माओं को क्या करना है हमें? क्यों माफ करें? हमारी गलती थोड़ी है, हम क्यों माफ करें? पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या करें? हमें माफ करना है। क्यों? क्यों माफ करना है हमें? क्योंकि 10 कारण बताओ हमें आत्माओं को क्यों माफ करना है। उन आत्माओं को जिन्होंने अपशब्द बोले, व्यंग बांध छोड़े, अपमानित किया, ऊपर से हमारी प्रशंसा की परंतु बाहर जाकर हमारी निंदा की, ग्लानी की, ऊपर ऊपर से दिखाया मित्र है परंतु काम शत्रु का किया, हम रो रहे थे और हमको रुलाया, सहयोग नहीं दिया और ही धक्का मार दिया, हम बीमार थे परंतु उनको दया ना आई। ऐसी आत्माओं के साथ क्या करें हम? क्षमा कर दे? क्यों? क्यों? जो शक्तिवान होता है वही क्षमा कर सकता है। कितनी सुंदर परिभाषा है। क्षमा करना हर एक के बस की बात नहीं है। जो महान आत्माएं होती है केवल वही क्षमा कर सकती है, और हम इस संसार की, इस सृष्टि की सर्वोत्तम आत्माएं, सर्व महान आत्माएं हैं। इसके लिए हमें उन सभी आत्माओं को बेशर्त, अनकंडीशनल पार्डन। इसलिए क्षमा नहीं, कोई शर्त नहीं है हमारी क्षमा में, हमें उन्हें सबको क्षमा कर देना है। क्योंकि जब तक हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा उनके लिए नहीं अपने लिए, क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में अब भी घृणा नफरत भरी पड़ी है, वो हेट्रेट का भाव है, वो नकारात्मक भाव है, वो निगेटिविटी इतनी गहरी पड़ी है कि हम सोचते हैं कि वो ज्ञान में आ जाए कैसे आएंगे। हम ही बाधा है, हम ही बाधक है उसके ज्ञान में आने के लिए। हम सोचते हैं हमको इतना सताया, इतनी यातनाएं पहुंचाई, शारीरिक यातना भी पहुंचा सकती है आत्माएं, हम कैसे उन्हें क्षमा कर दे? तो एक कारण बताया, क्योंकि हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, महान आत्माएं, इसलिए क्षमा करना है। दूसरा, हम पूर्वज है। हम सब कौन है? पूर्वज है। ये हमारी वंशावली है, हम एंसेस्टर्स है, फोर फादर्स है ह्यूमैनिटी के। सबसे पहले सृष्टि पर हम आई है, इसके लिए हमें उन्हें माफ करना है, क्योंकि वो अज्ञान में है, ना समझ है, हम पूर्वज है। तीसरा, हम दया सागर के बच्चे हैं। हम कौन है? दया सागर के बच्चे। वो दया निधान, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु है, ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ कंपैशन है, अल रहमान अल रहीम, ऐसा वो दया का सागर है और हम उसकी संतान है। कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना किसी कारण के कृपा करने वाला है वो, कॉजलेस मर्सी, कॉजलेस कंपैशन उसका है। हम उस ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ मर्सी की संतान है। इसके लिए हमें क्या करना है? क्षमा कर देना है आत्माओं को। अगला कारण, क्यों क्षमा करना है? क्षमा माना मां बनना है। वाह, हम जगत माता है, जगत जननी है, और जगत जननी का कर्तव्य है मां के समान सबकी पालना करनी है। पिछले संडे की मुरली, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। राज्य सत्ता यदि करना है तो अधिकारी स्वरूप, राज्य सत्ता यदि करना है तो रूहानी पालना देनी होगी आत्माओं को, मां बनकर, जगत माता बनकर, जगत जननी बनकर, जगन माता बनकर। ये सारी सृष्टि और ये सारी आत्माएं मेरी संतान है, चाहे वो उम्र में कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, बच्ची हो, सास हो, ससुर हो, पड़ोसी हो, ऑफिस के लोग हो, बॉस हो, कलीग हो, जूनियर हो, सीनियर हो, ये सब कौन है? हमारी वंशावली है। इसके लिए हमें उन सभी को माफ कर देना है। और क्यों माफ करना है? रहम दिल तो हो गया एक पॉइंट। ये समझ से कि उन्होंने जो कुछ भी किया अज्ञान है, वो अज्ञान में है, संस्कारों के अधीन है, संस्कारों के वश है, इनके लिए उनका कोई दोष नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बहुत दारू पीकर आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, तो हम क्या सोचते हैं? बेचारा परवश है, इन अंडर इन्फ्लुएंस। तो संसार की आत्माएं भी अंडर इन्फ्लुएंस है, कंडीशनड है, माया के अधीन है। और माया के अधीन अगर आत्माएं हैं, कलयुग का अंत है, तो क्या पुण्य कर्म करेगी? सोचने की बात है, क्या आत्माएं पुण्य कर्म करेगी? जब ज्ञान ही नहीं है तो पुण्य कहां से करेगी? जो करेगी सब पाप, पाप ही पाप, विकर्म ही विकर्म। इसके लिए हम क्यों प्रभावित हो? तो वो आत्मा ये सोचना कि इस समय अज्ञान में, यदि वो आत्मा ज्ञानी है तो, अब बताओ, अगर वो आत्मा ज्ञानी है और फिर भी क्रोध कर रही है तो हिसाब किताब तो ठीक है, परंतु क्रोध बहुत कर रही है। उस समय वो अज्ञान में है, एट दैट मोमेंट, उस समय माया के अधीन है, उस समय परवश हो चुकी है। और क्यों क्षमा करनी है महात्माओं को, जिन्होंने हमें अपशब्द बोले, टॉन्ट किया, कमेंट्स किए हमारे ऊपर, टिका टिप्पणी की, हंसी उड़ाई, उपहास किया? ऐसी आत्माएं हर एक के जीवन में है। कलंक लगाए, सबसे बड़ा आरोप क्या किया? कलंक लगाए, झूठे आरोप लगाए, उनको भी माफ कर देंगे? कि ये मुश्किल काम है, सबसे थोड़ी तो सजा मिलनी चाहिए, थोड़ी कैसे माफ कर देंगे जिन्होंने झूठे आरोप लगाए, फॉल्स एक्यूजेशन, या कर देंगे उनको भी? कर देंगे, करना तो है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जो हमारे वजह से दुखी है, उन्होंने जो दुख दिया वो हमारी वजह से ही दिया, ऐसे? हाँ, वो खुद ही दुखी होते हैं ये करते समय, उसको भी देख लेना है, बहुत सुंदर पॉइंट है। क्योंकि कोई भी विकर्म करने के बाद व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, उसकी इस बात को वो प्रकट नहीं करेगा, पर अंदर से तो दुखी है उस समय, उसको भी देख लेना है। और क्यों क्षमा करेंगे आत्माओं को? आत्मा का स्वधर्म शांत है तो क्या? पर वो तो निंदा ग्लानी अपमान कर रहा है हमारा, तो हम शांत रहे, पर हम पूछ रहे क्षमा क्यों कर देना उनको? हम विश्व कल्याणकारी है, एक दो के कल्याणकारी नहीं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, असंख्य आत्माओं को सुख देना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें सबका यदि कल्याण करना है, आवर इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, सारे जगत की आत्माओं का कल्याण करना है, ये भी एक कारण है। और क्यों क्षमा करेंगे हम? ये वो हो गया रहम दिल। ज्ञानी योगी का लक्षण ही माफ करना है, ज्ञानी योगी आत्मा का लक्षण ही है माफ करना। और कहा जाता है अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड कौन सा है? क्षमा। और एक मुख्य कारण है हमें क्षमा क्यों करना है, हमारे अंदर ही अंदर वो रहेगा जब तक हम क्षमा नहीं करते, और वो हमारी एनर्जी को व्यय करेगा, पूरा हमारी एनर्जी को सोख लेगा, खींच लेगा जब तक हम क्षमा नहीं करते। हमारे ओपीडी में एक विदेश की बहन आती थी 30 साल से ज्ञान में, इतनी बड़ी फाइल, डिप्रेस्ड, डिप्रेशन की 7-8 गोलियां चालू, दुखी, उदास, बाहर से कोई भी टेंशन नहीं है किसी भी चीज का, इंडिपेंडेंट है, फिर भी उदास। कितने डॉक्टर को बदल दिया, कितने साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिसिस्ट को दिखा दिया, फिर भी दुखी, फिर भी उदास, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुरली सुनाते हैं, सब करते हैं, परंतु दुख है। गहराई में जाने के बाद पता चला कि अज्ञान काल में, बहुत पहले, उसे किसी युवक से प्रेम था, परंतु उसकी जो छोटी बहन थी उसने उसके साथ शादी कर ली, और इसका उसकी बहन से भी बहुत प्यार था। अब क्या करें? और बाद में इसे ज्ञान मिल गया, परंतु एक जो भाव बना था अपनी बहन के लिए कि इसने छीन लिया जैसे किसी को मेरे से, वो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप धारण कर लिया। कितने सालों के बाद सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा होते हुए भी, और जब इस आत्मा को यह सिखाया गया, समझाया गया, और उसने योग का अभ्यास किया, रोज अपनी बहन को इमर्ज किया और उसे माफ कर दिया, तब कहीं जाकर यह शांत हुई। इतना गहरा बीज है इसका। हम ही दुखी हो जाते हैं यदि हम माफी न करें तो। हम माफी उनको उनके लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे? स्वयं के लिए। और एक कारण बाकी है जिसके लिए हमें संसार की सभी आत्माओं को माफ करना है। क्यों? कौन सा? सतयुग की स्थापना हो रही है तो क्या? तो संस्कार मिलन करना है। अच्छा, वो तो चलो, जब टकराव होता है संस्कार का तब संस्कार मिलन। यहां तो हमको सताया है, झूठे आरोप लगाए हैं, षड्यंत्र किए, ऐसे ऐसे षड्यंत्र जो हमने कभी सोचा ही नहीं था ये लोग करेंगे हमारे विरुद्ध। हमारा तो बहुत प्यार, विश्वास था इनमें। हाँ, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो, ये भी एक कारण है, हल्कापन हो जाएगा। हाँ, हम एक बाप के बच्चे हैं, वो भी एक कारण है। और एक कारण बचा है, हाँ, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो माफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमें, ये भाव हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि ज्ञान कहता है शुभ भावना, शुभ कामना, और ये तो ज्ञान के विरुद्ध हो गया, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और लाइट हाउस बनना है, और ये फैन कूलर की वजह से सुनाई नहीं आता है क्या? किस लिए करना है? किस, क्या रहने का मौका मिला है? अच्छा, अपमानित होने इसलिए माफ करना है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, शायद कहीं ना कहीं हम ही कारण है। ये कितना अच्छा, बहुत सुंदर चिंतन, बहुत सुंदर। उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया हम ही उसके लिए कारण है, ये हमारी ही रचना है। संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होता है, प्रकृति में जाता है, प्रकृति और संकल्प की रिएक्शन होती है और घटनाओं का निर्माण। घटनाएं जो भी घट रही है किसने निर्माण की है? हमने, हमने संकल्प किया, प्रकृति में संकल्प गया, हमने संकल्प किया मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, क्या करूं, मेरे पास बहुत गरीबी है। संकल्प गया प्रकृति में, समान संकल्पों को उसने ढूंढा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, समान संकल्पों की रिएक्शन हुई और ज्यादा गरीबी घर में आई। पहले गरीब थे, अभी और ज्यादा गरीब, और ऐसे ऐसे कारण बने कि हम और ही गरीब बने, लोगों ने हमको धोखा दिया और ही ज्यादा, जो पैसे थे वो भी गए, तो कहीं ना कहीं हम ही कारणीभूत है इसके लिए। अपमान कर रहे हैं हमारा, हमारे अंदर अहंकार था और उस अहंकार ने उनके अंदर संकल्प उत्पन्न किया कि इनका अहंकार चूर करना है, और उन्होंने ऐसे शब्द बोले उचित समय देखकर, अवसर देखकर, जब हम नीचे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी ही रचना है। और एक कारण है क्यों माफ करना है, मनसा सेवा। हाँ, अंत का भी अंतिम जन्म है तो अब हिसाब किताब का तो बहुत बार हो गया बीच बीच में पॉइंट्स, वो छोड़ के बताओ और देर इज नो अदर वे, एक ही रास्ता है बस, माफ कर दो। हाँ, एक कारण है, हमें संपूर्ण सारी आत्माओं को माफ करना है क्योंकि यह परमात्मा आज्ञा है। बाकी सारे कारण एक तरफ, तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू हो ना हो, कुछ भी, सब एक तरफ। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी में एक नियम होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब बिल्कुल मत पूछो, जाओ और मरो। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। जिंकू कि वह मरू, सहन इसलिए करना है क्योंकि परमात्मा आज्ञा है, माफ इसलिए करना है कि यह ईश्वरीय आज्ञा है, गॉड का ऑर्डर है, गॉड का ऑर्डिनेंस है। क्या हम वो नहीं मानेंगे? क्या इसके लिए कोई तर्क की आवश्यकता है? क्या वो कह रहा है हमें ये विश्वास नहीं है? कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है। और हम अपने एक जन्म को जानते हैं, वो हमारे सारे जन्मों को जानता है। उसे पता है हमने क्या क्या किया था। कृष्ण निंदा खड़ली मनुन महार जन्म प्राप्ति। संत कहते हैं शायद किसी जन्म में कृष्ण की निंदा की थी, इसीलिए इस जन्म में महार जन्म मिला। वो दिखाया है एक व्यक्ति जो जन्मांध था, बचपन से अंधा था, साइंटिस्ट ने उसके ऊपर प्रयोग किया, हिप्नोटिक रिग्रेशन, उसके पास्ट बर्थ में लेके गए और पता चला कि छठवें बर्थ में, पास्ट, सिक्स्थ लाइफ बिहाइंड, वहां पर वो एक जल्लाद था। जल्लाद का काम होता है आंखें फोड़ना। राजा है जिसको कहता है इसकी आंखें फोड़ दो, जो बहुत दुर्दांत अपराधी होते हैं, ऐसे बहुत कठोर अपराधी, उनकी आंखें फोड़ी जाती है। अब आंखें फोड़ना कोई पाप नहीं है क्योंकि वो राजाज्ञा है और उसका कर्तव्य है, परंतु इस व्यक्ति को आंखें फोड़ने में बहुत मजा आता था। वहां विकर्म हो गया, आंखें फोड़ने में बहुत अच्छा लगता है दूसरों की, वो सलाखे गरम गरम आंखों में डालना, यह ईश्वरीय आज्ञा है, परमात्मा आज्ञा है कि तुम शुभचिंतक हो, शुभचिंतक मणि हो, सारे संसार के कल्याणकारी हो, इस संसार की सर्व महान आत्मा हो, तुम पूर्वज हो, उद्धार मूर्त हो, उदाहरण मूर्त हो, तुम हम किसी के प्रति भी नफरत, घृणा, ईर्षा, द्वेष, मद, मत्सर, इस तरह के कोई भाव नहीं रख सकते, तुम इन सब से ऊपर हो। ब्रह्मा बाबा की कितनी ग्लानि की, कितनी ग्लानि की, कितनी ग्लानि की, उसका कहीं अभी वर्णन नहीं है, छपा भी नहीं है किसी किताब में, परंतु इतनी भयंकर और जबरदस्त ग्लानि की थी लोगों ने, आर्य समाज से लेकर, सिंध कम्युनिटी से लेकर, सब ने, सरकार से लेकर।